समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने।
ओम सर्व मंगल मांगलिये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज से चैत्र नवरात्र का पावन उत्सव शुरू हो गया है। इस 9 दिन की पर्व को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग है। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के साथ भक्त मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं और चैत्र नवरात्र के साथ ही आज ही हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है। तो श्रोताओं, आइए इस चैत्र नवरात्रि और नववर्ष पर हम सभी नई ऊर्जा, नई आशा और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लें। तो इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे की सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट सुभद्रा रामाचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar, good morning Akarshita. Happy Thursday to all you wonderful folks who are with us this beautiful morning as we get ready for Aaj Savere, our magazine program. So Akarshita, let us begin with some news headlines first.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लागत लगभग 2,585 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना है। इससे लघु जल विद्युत क्षेत्र में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है, जो स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने, दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक होगा।
चार बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पहला है भारत में मेक इन इंडिया, उसके लिए 33,660 करोड़ रुपीस के सैंक्शन से कैबिनेट में अप्रूव हुई। दूसरा जो 2023-24 का कॉटन सीजन था, उसमें 11,712 करोड़ रुपए का जो सपोर्ट मिला, उसके रीइंबर्समेंट से रिलेटेड मैटर्स अप्रूव हुए। चौथा, बाराबंकी से बहराइच, इसका एक्सेस कंट्रोल्ड 4-लेन हाईवे 6,969 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ और स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम आज अप्रूव हुई।
कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्यों को लगभग 200 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
The government had notified the amendment of the National Highways Fee Rules 2026 to strengthen toll compliance and digital enforcement. The Ministry of Road Transport and Highways said that the amendment provides a structured recovery mechanism in cases of unpaid user fees and has been introduced to strengthen digital enforcement of toll collection. It also aims to ensure efficient and transparent realization of the user fee on national highways. The structured recovery mechanism and for unpaid user fee notified under Rule 14 includes a technology-driven electronic notice, e-notice system, wherein electronic notices will be issued to registered vehicle owners specifying vehicle details, date and location of passage and the amount payable.
आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में हम वनस्पति विज्ञानी श्री गंभीर सिंह योनजोन से बात करेंगे। श्री सिंह को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मान किया जाएगा। ये पॉडकास्ट आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल से प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है।
President Draupadi Murmu, who is on a three-day visit to Uttar Pradesh, will visit the Sri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya today. On the first day of Chaitra Navratri, the President will attend Vedic rituals at the Ram Mandir and be present for the installation of the Sri Ram Yantra on the temple's second floor. We have a report.
According to General Secretary of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, Champat Rai, the Sri Ram Yantra was brought to Ayodhya 2 years ago. Based on Vedic mathematics and geometric patterns, the Yantra is regarded as the sacred symbol believed to channel divine energy and positive spiritual vibrations. It was being worshipped before Raja Ram from 12th March and will be placed on the second floor of the Ram Temple during the ceremony. During her 3.5 hour stay, the President will also felicitate workers involved in the temple's construction. Around 7,000 people are expected to attend the event. Spiritual leader Mata Amritanandmayi will also participate in the function with around 1,000 devotees. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Ayodhya.
In Jammu and Kashmir, preparations are in full swing in Jammu for the celebrations of days-long Holi Chaitra Navratri festival beginning today. Markets are bustling with shoppers buying traditional clothes, sweets and festive essentials, while families across communities gear up to celebrate. Security arrangements are being strengthened at important religious sites with random checkpoints where vehicles are being frisked while around the clock patrolling is going on to ensure safe and peaceful celebrations. Meanwhile, Department of Tourism J&K in collaboration with the Jammu District Administration is organizing the Chaitra Navratra Festival 2026 at Bahu Fort today, featuring cultural and religious performances.
संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी समूह की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत बाल जीवन रक्षा के क्षेत्र वैश्विक स्तर पर अग्रणी उदाहरण बनकर उभरा है। रिपोर्ट के मुताबिक नवजात मृत्यु दर में लगभग 70% की गिरावट आई है, जो 1990 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 57 मौतों से घटकर 2024 में 17 रह गई है। ये मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार को दर्शाता है। इसी तरह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में और अधिक 89% की कमी दर्ज की गई है, जो 1990 में 127 से घटकर 224 में 27 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और विस्तार टीकाकरण कार्यक्रमों जैसी प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रयासों ने इस परिवर्तन को गति देने और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
The month-long Uttarvahini Narmada Parikrama is all set to kick off today in Gujarat. Lakhs of devotees from across India will gather for this 30-kilometer spiritual journey along the holy river Narmada. Our correspondent reports that the state government has introduced a mandatory digital registration system and set up modern facilities to facilitate the pilgrims. A report.
This sacred 30-kilometer journey begins from the banks of Narmada at Rampura and concludes back at the same point after completing the circumambulation. To facilitate the lakhs of pilgrims arriving from Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and across the country, the administration has made digital registration mandatory this time. The parikrama can only be commenced after scanning the QR code obtained upon the registration on the Yatradham portal. High-tech security measures including RFID technology and CCTV surveillance are also being deployed along the 30-kilometer route developed at a cost of 10 crore rupees. According to official data, the number of pilgrims in this spiritual journey has seen a continuous rise. While 4 lakh devotees performed the parikrama in 2024, the figure crossed 10 lakh mark last year. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के शुरुआती कुछ मैचों में ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करेंगे। अभिषेक शर्मा टीम के उप कप्तान रहेंगे। पैट कमिंस अभी तक पीठ की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। नियमित कप्तान कमिंस पूरी तरह फिट होने के बाद कप्तानी की जिम्मेदारी फिर से संभाल लेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद का पहला मैच वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 28 तारीख से होगा। आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई की खबरों के साथ हैं सुभद्रा।
Yes, Akarshita, starting with news from Chennai. In Chennai, the Madras High Court has ordered the removal of the invasive tree species Prosopis juliflora across the state. A special committee led by former judges A. Selvam and B. Bharathidasan will oversee the process. The court directed the government to clear the species from public lands, while private landowners must remove it within 30 days or face action by officials, with costs charged per acre. The entire process, including identification, auction and removal, must be completed within a fixed timeline. A bench of N. Satish Kumar and D. Bharata Chakravarti also asked the state to create an online dashboard to track progress, including removal, replantation and areas cleared.
और आइए अब जानते हैं दिल्ली से खबरें. दिल्ली सरकार ने कल दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के अंतर्गत लंबे समय से लंबित इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सब्सिडी के वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने कंपनियों और फर्मों के 3,000 से अधिक सत्यापित लाभार्थियों को सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनके दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन पूरा हो चुका है. वहीं भारत जनजाति महोत्सव 2026 कल राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हुआ. महोत्सव में जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और उद्यमिता को प्रदर्शित किया गया. इसका आयोजन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा सुंदर नर्सरी में किया जा रहा है. 30 मार्च तक चलने वाले महोत्सव में देश भर के 78 वन धन विकास केंद्रों के 200 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे. वहीं दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि चैत्र नवरात्र के अवसर पर निगम द्वारा राजधानी के सभी प्रमुख मंदिरों और उनके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. दिल्ली के राजीव गांधी स्टेडियम में आज से भजन क्लबिंग कार्यक्रम शुरू हो रहा है. समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज स्टेडियम में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि हिंदी नववर्ष के अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम भक्ति, संगीत और सांस्कृतिक समरसता का अद्भुत संगम बनेगा.
नाउ गोइंग टू बेंगलुरु. नाउ इन बेंगलुरु चीफ कमिश्नर महेश्वर राव हैज डायरेक्टेड ऑफिशियल्स टू कम्प्लीट स्टॉर्म वाटर ड्रेन राजाकलुवे वर्क्स बिफोर द मॉनसून टू प्रिवेंट फ्लडिंग. During inspections in North Bengaluru, he stressed faster progress on lake connectivity projects and suggested nature-based solutions like wetlands, including at Jakur Lake. He also called for steps like installing a sluice gate at Kogilu Lake, prioritizing lake rejuvenation and creating pedestrian-friendly spaces along drains. We have another news from Bengaluru. Karnataka aims to scale up renewable energy capacity to 25,000 megawatt over the next 5 years, said Gaurav Gupta, Additional Chief Secretary, Energy Department. Speaking at an event, he highlighted the need for cooperation from investors and the public. He noted that land acquisition remains a challenge and stressed awareness among farmers. Akarshita?
जी हाँ, और अब चलिए चलते हैं मुंबई की ओर और जानते हैं वहाँ की खबरें. महाराष्ट्र विधानसभा ने मोटर वाहन कर संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि इस कानून के तहत पुराने वाहनों पर पर्यावरण कर बढ़ाया गया है, जिसमें दोपहिया, पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए एक मुश्त शुल्क निर्धारित किया गया है. इस विधेयक का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है. वहीं महाराष्ट्र सरकार युवाओं में स्वरोजगार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री महानिधि फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन नामक एक विशेष योजना शुरू करेगी. मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि इस पहल के तहत लगभग 5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी मिलेगी. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और राज्य भर में रोजगार के अवसर सृजित करना है. यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से पश्चिमी रेलवे आज से अपनी 16 मौजूदा उपनगरीय ट्रेनों को 15 डिब्बों वाली ट्रेनों में परिवर्तित करेगा. इसके साथ ही 15 डिब्बों वाली ट्रेनों की कुल संख्या 211 से बढ़कर 227 हो जाएगी.
Going over to Hyderabad now, a 6-day skill development training program on bamboo handicraft making and non-timber forest product processing concluded yesterday at BHEL Sangareddy district. The program was jointly organized by the Department of Resource Management and Consumer Science, College of Social Sciences, under Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University. The training ran from 13th to 18th March 2026.
कलकत्ता उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुजाय पॉल ने महत्वपूर्ण पूरक सूची जारी होने से पहले एसआईआर से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए गृह सचिव और पुलिस प्रमुखों सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। ये महत्वपूर्ण बैठक पहले फैसले के लिए पूरक सूची के प्रकाशन से पहले होने की उम्मीद है। और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली में आज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। और सुभद्रा, आज सुबह भी मौसम काफी अच्छा था, काफी बढ़िया था, ना बहुत ज्यादा ठंड थी ना बहुत गर्मी थी।
Yeah, I know, but you're not wearing anything warm. And look at me.
और आइए बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 32 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहेगा।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 24 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 31 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद फ्यू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 21 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 35 डिग्रीज सेल्सियस।
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या खास हुआ।
यस आकर्षिता, स्टार्टिंग विद द ईयर 1895, द लुमियर ब्रदर्स पब्लिकली डेमोंस्ट्रेटेड मोशन पिक्चर्स टेक्नोलॉजी इन पेरिस, कंट्रीब्यूटिंग टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा एज अ रेवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड 1918, द यूएस कांग्रेस अप्रूव्स डेलाइट सेविंग टाइम। जर्मनी स्टार्टेड द यूज ऑफ डीएसटी इन 1916, अदर कंट्रीज फॉलोड सूट। Daylight saving time or British summer time is a practice of adjusting clocks forward 1 hour near the start of spring so that afternoons have more daylight. Also adjust time backwards during the autumn season by 1 hour. It is not practiced universally worldwide but is common in Europe and North America. And 1990, first World Ice Hockey Tournament for women was held in Ottawa. 1953, the Academy Awards was televised for the first time with Bob Hope as the host. 1949, the American Museum of Atomic Energy, the first U.S. museum devoted exclusively to the history of atomic energy, opened to the public in a building that was an old wartime cafeteria in Oak Ridge, Tennessee.
और आज के दिन ही 1944 में आजाद हिंद फौज ने पहली बार पूर्वोत्तर भारत की मुख्य भूमि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और आज के दिन ही 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच 25 साल की ऐतिहासिक मैत्री और शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। और आज के दिन ही 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था।
Legendary folk singer, poet, songwriter, activist Bob Dylan released his debut album. It was simply called Bob Dylan on this day, 1962. And 1972, India-Bangladesh Treaty of Friendship, Cooperation and Peace, a 25-year treaty was signed on this day, 1972, forging close bilateral relations between India and the newly established state of Bangladesh. And 2001, India's indigenously developed pilotless target aircraft, Lakshya, successfully completed its test flight at Chandipur, showcasing advancement in defense technology.
और आज के दिन ही 2013 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में पदभार संभाला था। और आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। अंत में मित्रों इतना ही कहूंगा कि अंत महज एक मुहावरा है जिसे शब्द हमेशा अपने विस्फोट से उड़ा देते हैं और बचा रहता है हर बार वही एक कच्चा सा आदिम मिट्टी जैसा ताजा आरंभ, जहां से हर चीज फिर से शुरू हो सकती है। ये पंक्तियां हैं केदारनाथ सिंह की। आज प्रमुख आधुनिक हिंदी कवियों में से एक केदारनाथ सिंह की पुण्यतिथि है। केदारनाथ सिंह की कविता यात्रा का आरंभ एक गीतकार के रूप में हुआ। व्याघ्रीय की संपादन में प्रकाशित तीसरा सप्तक के 7 कवियों में से एक थे। उनका पहला कविता संग्रह अभी 1960 में प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा कविता संग्रह जमीन पक रही है 20 वर्षों के लंबे संयम और अंतराल के बाद 1980 में आया। उन्हें अकाल में सारस के लिए 1989 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 2014 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया।
Today is the death anniversary of Sri M. A. Iyengar, who served as the first deputy speaker and later as the speaker of Indian Lok Sabha. He joined the Indian freedom struggle when Mahatma Gandhi asked Indian youths to be part of India's struggle for independence and went to jail twice. And today we pay tributes to Randy Rhoads, brilliant guitar player whose life was cut short due to a plane crash at the age of 25. His career was brief, but Randy left an indelible mark on modern rock music as a brilliant, bewildering guitarist in Ozzy Osbourne's original solo band.
आज प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक योगेश गौंड की जयंती है। उन्हें विशेष रूप से फिल्म आनंद के गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहेली हाय, रिमझिम गिरे सावन फिल्म मंजिल, रजनीगंधा फूल तुम्हारे फिल्म रजनीगंधा जैसे सुपर हिट गीतों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है। आइए सुनते हैं उनके ये गीत।
कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए।
योगेश ने अपने करियर में संगीतकार घरानों के पिता पुत्र संगीतकारों के साथ काम किया। इस परंपरा में सलिल और संजय चौधरी और सचिन देव और राहुल देव बर्मन के लिए गीत भी लिखे। भारतीय हिंदी सिनेमा में उनके दिए योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा यश भाटी पुरस्कार से भी नवाजा गया।
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
Birth anniversary of cricketer wicketkeeper Dilawar Hussain, who represented India in the 1930s. First Indian to record 250s in the same test match. Dilawar was a wicketkeeper batsman who played 3 tests for India. He scored 254 runs in 6 test innings, averaging 42.33. Abbas Ali Beg, former cricketer, celebrates his 87th birthday today. This classy right-handed stroke player has taken part in 10 tests between 1959 and 1967. And of course, in a career spanning 21 years, he scored 12,367 runs in first-class cricket at an average of 34.16. He coached Indian cricket team to tour Australia in 1991-92 and 92 Cricket World Cup. And also, today is 1919, birth anniversary tribute to Lenny Tristano, the influential American jazz pianist, composer, educator, known for pioneering cool jazz, bebop and free improvisation. Blind from childhood, he developed a highly complex intellectual style. Also a dedicated teacher, he founded one of the first jazz schools.
आज भारतीय सिनेमा के मशहूर हास्य अभिनेता सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी की जयंती है। उन्होंने अपने हास्य अभिनय से दर्शकों में काफी लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में फिल्म अफसाना से की थी। जगदीप ने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें लोग उनके वास्तविक नाम से ना जानकर जगदीप नाम से जानते थे। वे साल 1975 में आई मशहूर फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार से काफी लोकप्रिय हुए। आइए सुनते हैं फिल्म शोले से उनका ये डायलॉग।
अब आप समझो कि पेट पका के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
फिर क्या हुआ?
अरे फिर होना क्या था, ये तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मेरे पिन फिनाई तो जना सुधाई कर दी।
फिर क्या हुआ?
बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
क्या कहा?
क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ।
Birth anniversary of Indian movie director Sai Paranjpe, who was also a screenwriter. She was a person behind some of the most celebrated films of Indian cinema like Chashme Badhur, Sparsh and Disha. In fact, she also won the National Film Award for a screenplay for the movie Sparsh. Government of India also rewarded her with the civilian honor of Padma Bhushan for her contribution to Indian movies. And today is the birthday of American bassist Billy Sheehan, known for his work with Talas, his own group, Steve Vai, David, Mr. Big, Niasen, and the Winery Dogs. Of course, Sheehan has won the Best Rock Bass Player Reader's Poll from Guitar Players Magazine 5 times for his lead bass playing style. And he's also the author of popular series of instructional books and videos. He has hosted seminars at the famous Berklee College of Music.
आज उत्तराखंड की लोक संगीत से जुड़ी प्रसिद्ध लोक गायिका माधुरी बड़थवाल का जन्मदिन है। लोक गीतों और लोक संगीत की संरक्षण और प्रचार के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर माधुरी बड़थवाल को पद्मश्री से नवाजा है। माधुरी बड़थवाल ऑल इंडिया रेडियो में पहली महिला संगीतकार के रूप में भी जानी जाती हैं। इनको वर्ष 2019 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। माधुरी बड़थवाल उत्तराखंड के लोक संगीत के संरक्षण के लिए बरसों से काम कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका ये लोकगीत।
Hollywood and television actor Bruce Willis turned 71 today. Best known for the role of John McClane in the Die Hard series, he starred in hundreds of movies during his career. And of course, so many movies are there. And today is also the birthday of Hollywood legend Glenn Close, who drew acclaim for her considerable range and versatility.
आज अभिनेता नवीन निश्चल की पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1970 में फिल्म सावन भादो से की थी। उन्होंने फिल्म विक्टोरिया नंबर 2003, परवाना, बुढ़ा मिल गया जैसी कई चर्चित फिल्मों में काम किया। ये सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।
तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की।
यस, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नाउ विद समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे,
नमस्कार।